function. वाणी शक्तिशाली है या साइलेंस? वाणी शक्तिशाली है या साइलेंस? क्यों?
साइलेंस में ज्यादा
शक्ति क्यों? आवाज से परे में ज्यादा शक्ति है या आवाज में ज्यादा शक्ति? जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाती है उसमें उतनी ज्यादा शक्ति। एटम कितना सूक्ष्म होता है उसमें इतनी शक्ति है कि विनाश कर सकता है अगर उसको। तो जो चीज जितनी सूक्ष्म है वो उतनी शक्तिशाली है, जो जितनी स्थिति जितनी सूक्ष्म है उतनी वो शक्तिशाली है। हर चीज स्थूल अध्यात्म की या संसार की, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाती है उतनी ऑटोमेटिक उसमें पावर आती जाती है। ये नियम है। साइलेंस, साइलेंस पावर है। एक शास्त्रों में एक वाक्य है, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। एक गुरु बैठा हुआ है, उसके सामने हजारों शिष्य बैठे हैं, ना गुरु कुछ बोल रहा है ना शिष्य कुछ पूछ रहे है। गुरु का मौन का व्याख्यान, उस मौन से ही शिष्यों के संशय समाप्त हो रहे। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। शिष्यों के जो संशय है बिना पूछे ही गुरु अपने मौन से ही समाप्त कर रहे हैं। तो मौन में बहुत ज्यादा शक्ति है।
मम्मा बाबा के सामने भी कोई जाते थे तो अपना सब प्रश्नों का जवाब ढूंढ जाते।
अभी भी
बाबा
के सामने जाएंगे
तो
स्थिति का प्रॉब्लम। तो हर चीज जितनी सूक्ष्म उतनी वो अधिक शक्तिशाली। वाणी भी सूक्ष्म होते 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 मौन की तरफ चलती है। एक तरफ बोल एक तरफ मौन, एक ही एंड के दो पोल है। जितना जितना वाणी कम कम होती जाती है उसमें पावर बढ़ती जाती है। तो आज क्या बोला बाबा ने? वेट भी कम करो और वेट को मत करो। दो चीज को ठीक है, शुरुआत आवाज से परे निराकारी वतन है और आकारी वतन है। तो उसके लिए क्या बोलो? दोनों ही आवाज से परे, वहाँ क्या है इशारा, मूवी या इशारों की भाषा है, इशारों की भाषा या मूवी। तो बाबा ने कहा उस स्थिति में स्थित होने के लिए कहा। उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं, वाणी से जितनी सेवा हो सकती है करते हो, मुख से बोल सुनना सुनाना, उतना ही उसके भी ऊपर, उसके भी ऊपर कौन सी बातों से सेवा कर सकते हो? प्रश्न पूछा चार, दृष्टि दृष्टि से, वाइब्रेशन से, और चौथा श्रेष्ठ अनुभव के प्रभाव से। तो दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से और श्रेष्ठ अनुभव से सेवा करनी, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा। दृष्टि से सेवा कैसे की जाए? आत्मिक दृष्टि। बाबा ने एक मुरली में कहा जब भी तुम किसी को आत्मा देखते हो तो क्या करते हो उसको? उसको करंट देते हो। किसी भी आत्मा को, किसी भी आत्मा को आत्मा देखना अर्थात उसको करंट देना। खाली आत्मा देखने से ही हम आत्मा को करंट देते हैं। ये हफ्ते में भी मुरली चली ना, भाई भाई की दृष्टि। एक मुरली पूरी चली देह भान पर, बीच में आत्माभिमान और देहाभिमान। बाबा ने कहा 63 जन्म का के पतित आत्मा एक जन्म में पावन बने, ये माफी का घर नहीं है। जन्म जन्मांतर का देहाभिमान एक जन्म में आत्माभिमानी बन, ये मुश्किल भासता है। ये
जन्म में इसकी जन्म के लिए,
हाँ वही, तो ये बहुत मुश्किल काम है। आत्मा में देह भान के संस्कार बहुत ज्यादा है, तो जन्म जन्म का देह अभिमान, एक जन्म में आत्माभिमानी बन जाना, ये मुश्किल भासता है। ये मासी का घर नहीं है। और वीरेंद्र भाई आ जाओ, ये बाबा ने कहा बहुत भारी मंजिल है, सबसे बड़ी मंजिल है मासी का घर नहीं है, आत्माभिमानी बनना। किसी के भी देह की ओर, उसी मुरली में क्या था, किसी की देह की तरफ दृष्टि ना जाए, किसी की देह की ओर दृष्टि ना जाए। कभी बाबा ने कहा आत्मा के बजाय अगर तुम शरीर को देखते हो तो ये भी क्या है,
विकार है,
विकर्म, विकल्प,
विकल्प है।
बाप की याद के सिवा और किसी को भी याद करते हो तो ये भी क्या है, ये भी विकर्म,
विकर्म है।
बाप की याद के अलावा और किसी को भी याद करना, ये भी विकर्म है। और ज्ञान में अज्ञान में एक विकर्म का एक गुना दंड, एक का एक गुना, और ज्ञान में आने के बाद
100 गुना 100 गुना
10 गुना पदम गुना, आज 10 गुना जी। बच्चों को बाबा को ब्रह्म भाव की बात कर रहे, बाबा ने ये भी बोला ना, बाबा भी बच्चों को याद करते, किन को याद करते, जो मददगार है, जो मीठे है, जो सर्विसेबल है। तुम मुझे जितना अच्छी तरह याद करते हो तो मैं उन बच्चों को भी उतना अच्छी तरह याद करता हूँ। उसका याद करना अलग है, ब्रह्मा का भी याद करना, वो कल्याण की भावना से याद करते हैं, वो देह भान का याद है हमारे।
सामने बैठे,
सामने वहाँ पर जो बैठे हैं, सामने बैठे वालों को बाप नहीं देखते, बाबा किसको देखते हैं, जो मीठे और सर्विसेबल बच्चे और जो बाहर बैठे हैं उनको बाप देखते हैं, उनको याद करते हैं, उनको सकाश देते हैं, सर्च लाइट देते हैं, शक्ति देते हैं, लाइट देते हैं। तो और क्या बोला, तो हमको अभी सर्वर कौन सी सर्विस करनी है, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से और श्रेष्ठ अनुभव,
अनुभव, अनुभव से सेवा करना।
बाबा ने पूछा जैसे वाणी से सेवा करते हो वैसे इससे सेवा करते हो, दृष्टि से सेवा, वृत्ति से सेवा, वृत्ति से वायुमंडल है, वृत्ति से वृत्तियों को परिवर्तन करने बात थे बाबा ने, ये सप्ताह में सीजन में की थी। अभी हमारे पास 6 मास है, तो 6 मास का प्लान बनाना है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 मास का श्रेष्ठ पुरुषार्थ का प्लान। जो स्थिति आज है 6 मास के बाद वो नहीं रहनी चाहिए, ऊपर रहनी चाहिए। तो हर मुरली को इस रीति से लिया जाए कि इससे क्या पुरुषार्थ में चेंज किया जाए। तो बाबा ने दृष्टि से सेवा करने के लिए कहा, दृष्टि से सेवा कैसे करेंगे, हरेक को आत्मा देखने से। जब भी तुम किसी को आत्मा देखते हो तो करंट देते हो उस आत्मा को, एक दृष्टि, वृत्ति से सेवा, श्रेष्ठ वृत्ति। पिछले संडे की मुरली थी ना पवित्रता की, 7 बातें, सुशील भाई कौन सी, ऑनेस्टी वाली, पहला सच्चा रहना बाप से, दूसरा, दूसरा अमानत में, जो खजाने बाप से मिले हुए बाप के डायरेक्शन के अलावा किसी के लिए यूज न करे, दूसरा, तीसरा शुभ भावना शुभ कामना, चौथा चढ़ती कला का अनुभव, पांचवा समर्थ स्थिति का अनुभव, छठवा, छठवा जैसे बाप जो है, जैसे है बाप ने अपने आप को तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष किया है वैसे तुम जो हो जैसे हो बाप के सामने प्रत्यक्ष करो, और सत्वा फाउंडेशन, हर बात का फाउंडेशन का आधार है प्राप्ति और अनुभव। अगर ये नहीं है तो दुख होगा। तो ये बाबा ने 7 बातें 7 संडे के मुरली में कही थी। तो दृष्टि से सेवा करनी है, वृत्ति से सेवा करनी, श्रेष्ठ वृत्ति हर आत्मा के प्रति वृत्ति, फिर वाइब्रेशन, जितने हमारे श्रेष्ठ संकल्प उतने वाइब्रेशन शक्तिशाली, और चौथा अनुभव। आगे मुरली में बाबा ने कहा ना आत्मा को क्या चाहिए, अनुभव चाहिए ना, तो ऐसे सुनाओ जैसे कि अनुभवी बनकर सुनाओ तो वो उनको अनुभव होगा। जैसे शिविर में तुम कराते हो, सुनाते हो साथ साथ अनुभव भी कराते हो आत्मा को, जो बातें सुनी वो तो भूल जाएगी, पर जो अनुभव उसने किया आत्मा ने, एक सेकंड के लिए भी किया वो नहीं भूलेगा। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है टीचर बहनों से बातें करते हुए, कि संसार के जो लोग हैं वो क्या करा सकते हैं, भाषण देने वाले हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं। संसार में एक्टर्स जो है फिल्मों के वो हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, पर तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। आत्माएं जो है वो अशरीरी बना सकते, वो आत्माएं जो है वो अशरीरी नहीं बना सकते सभा को। तुम भाषण देते देते आत्माओं को अशरीरीपन का अनुभव करा सकते हो, वो लोग तो हंसाएंगे रुलाएंगे, अशरीर बना सकते नहीं बना सकते। परमात्मा शक्ति चाहिए अशरीर बनाने के लिए। तो वाणी से और क्या बोला आज के मुरली में आगे, जैसे बाप का सेवा अर्थात गौरी का बाप का सुनाना या बाप का परिचय देना, तो वाणी से जैसे संबंध जुटाते हो बाप से नंबर वार, वैसे ही तुम अपनी स्थिति से, सूक्ष्म स्थिति से, मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति से, मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति से,
एक सेकंड में उसको अनुभूति कराना,
एक सेकंड में उसको अनुभूति कराना। एग्जांपल कौन सा दिया, साइंस वाले क्या कर रहे हैं आजकल, हर चीज बड़ी चीज को सूक्ष्म और हर सूक्ष्म चीज में शक्ति भर रहे हैं, उसमें उतनी पावर है जितनी बड़ी चीज में है। मिठास और
साइक्लिन बनाते हैं उसको,
मिठास और साइक्लिन, क्वांटिटी नहीं चाहिए, अभी आजकल क्वांटिटी देख रहे हैं। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि तुम एक घंटे में भाषण, वाणी से जो एक घंटे में भाषण देकर बाप का परिचय देते हो, वैसे ही एक सेकंड की क्या
अनुभूति करा,
एक सेकंड की पावरफुल वृत्ति, पावरफुल स्थिति, आत्मिक भाव, कल्याणकारी भावना से आत्माओं को अनुभव करा। एक समय आएगा बाबा ने कहा किसी को तुम 7 दिन का कोर्स कितना देर में कराओगे,
एक सेकंड
में कराओगे। कैसे कराओगे कोर्स,
अपने अनुभूति द्वारा।
1000 लोग खड़े हैं, हमने उनको कहा तुम सब आत्माएं हो, तुरंत अनुभव हो जाएगा सबको कि वो आत्माएं। किसी को हमने कहा कि ये तुम्हारा बाप है, दूसरा सेकंड में उसको अनुभव हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, ये बाप है, हो गया कोर्स खत्म। जब बाप पे निश्चय हो गया तो सब पे निश्चय हो गया आपके, वापिस वो चक्र 5000 साल का है या नहीं है वो कुछ पूछेगा नहीं, बाप को मान लिया मतलब सब मान लिया। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है वो बाप की याद में रहते हैं। अभी एक हफ्ते में ये भी बताया था ना, निश्चय जितना है उतना ज्ञान, सारा ज्ञान समझने की दरकार भी नहीं है उनको, वो उतना ही समझ के जाएंगे। धर्म स्थापक भी आएंगे, क्राइस्ट आएगा, बुद्ध आएगा, थोड़ा सा ही सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, वही संस्कार लेकर जाएंगे और अपने अपने समय पर वापस आकर धर्म स्थापन करेंगे। तो बाबा ने कहा ये सेवा करने के लिए क्या चाहिए, फिर दो बातें चाहिए, वेट को क्या करो
कम
और वेस्ट को मत करो। तो वेस्ट कौन कौन सा, कम मत करो,
समय
शक्ति और संकल्प, तीन बातें बाबा ने बोली। एक तो समय वेस्ट नहीं करो, संकल्प वेस्ट नहीं करो, शक्ति वेस्ट नहीं करो, और एक चीज है वाणी की शक्ति, वो इसमें नहीं बोला है, पर वाणी भी एक पावर है। श्वास और समय की चीज है, श्वास समय की है, देखा जाए तो श्वास और समय की है। तो बाबा ने क्या कहा उसमें, समय और शक्ति, इसके लिए मुख्य रूप से कहा हुआ है। तो इसके लिए क्या करो, इनको वेस्ट नहीं करो, स्वयं के प्रति भी जमा हो और औरों के प्रति सेवा के लिए भी स्टॉक तुम्हारे पास जमा हो, इतना स्टॉक तुम्हारे पास होना चाहिए।
मास्टर ज्ञान
सारा विश्व ही तुम्हारा परिवार,
वो इसके लिए क्यों जमा करना है उसका कारण बताएं आगे बाबा से, क्यों जमा करना है, क्यों सेवा करना है, क्योंकि सारा विश्व ही श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। तो वहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमी की जाती है, बड़े परिवार में इकोनॉमी का ख्याल रहता है। तो समय और शक्ति को वेस्ट नहीं करना। ब्राह्मण आत्माओं का समय कहाँ वेस्ट होता है, अरविंद भाई चिंतन प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा मोबाइल इंटरनेट और टीवी। ब्राह्मण आत्माओं का सबसे अधिक समय किसमें वेस्ट होता है,
इंटरनेट
सेकेंड मोबाइल टीवी
और वर्कशॉप ज्यादा आ गया।
नहीं नहीं माया आती है। जब रावण ने देखा कि ये लोग सिनेमा हॉल नहीं जाते तो रावण ने अपनी लास्ट चाल फेंकी, अरे के रूम में घर में टीवी डाल दिया। जब देखा कि टीवी भी नहीं देखते लोग तो कुछ कुछ
मोबाइल,
तो हर एक के जेब में मोबाइल डाल दिया
उसमें नेट आ गया
उसमें नेट आ गया तो ब्राह्मण आत्माओं का समय कहाँ कहाँ जाता है। और बोलो बहन जी, दूसरों को देखने में, दूसरा क्या कर रहा है, और
दूसरों गलती देखने में,
गलती देखने में और पर चिंतन तो
बड़ा
बड़ा
अंदर
अंदर, अंदर उसके बताओ प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा
है। चेकिंग करने में तो लगता है
बाबा ने लास्ट संडे बोला था ना चेकिंग के, लास्ट संडे का वरदान था चेकिंग करने में और चेंज। अगर चेकिंग करो और चेंज नहीं करो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो चेकिंग तो करो पर साथ साथ चेंज भी करो। आलस्य अलबेलापन नींद में, ब्राह्मण आत्माओं का समय कहाँ कहाँ जाता है, नींद
ज्यादा
नींद करने के बाद भी थकान का अनुभव होता है कुछ कुछ आत्माओं को। पुरुषार्थ करने के लिए शरीर साथ नहीं दे रहा ऐसा कहते हैं। पहले बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे, अभी नहीं कर रहे क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है। तंदुरुस्ती के बारे में क्या कहा था सुशील भाई बाबा ने वरदान में अभी एक हफ्ते में, बोला था कुछ आत्मा और
आत्मा
और देह की तंदुरुस्ती के बारे में एक वरदान था। बहुत अच्छा वरदान था। अगर आत्मा तंदुरुस्त है तो शरीर भी तंदुरुस्त, शरीर के हिसाब किताब, शरीर के जो भोग है वो कांटों से, बीमारी जो है वो कांटों से, सूली से घाटा बन जाएगा। वो ऐसी आत्मा क्या होगी, कर्म भोग का वर्णन नहीं करेगी, कर्म योग की स्थिति का वर्णन करेगी। कष्ट जो है, बीमारी का कष्ट, वो परिवर्तन की शक्ति से
फीलिंग नहीं करेगी,
संतुष्टता में परिवर्तन हो जाएगा। और ये स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और संतुष्टता की लहर किरणें फैलाएंगे। तो आत्माएं कहती है शरीर साथ नहीं दे रहा है, अभी उम्र हो रही है तो शरीर भी साथ नहीं देते हैं। पहले बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे। और आत्माओं का समय कहाँ व्यस्त होता है राजेश भाई, फीलिंग फीलिंग में, किसी ने कुछ कहा और फीलिंग, खाने पीने में सबसे ज्यादा समय, बनाने में, खाना बनाने में वो अलग बात है, ससुराई
ससुराई
बाबा ने बोला याद में बनाओ,
भंडारे वालों के लिए बोला
जो भंडारे वाले नहीं है उनके लिए नहीं, भोजन आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, सुबह क्या था, कोई कोई वहीं से एक भाई था हमारा, वो उठते ही पहला उठता था 8 बजे और उठते ही किचन में फोन, आज क्या बनाए तो भोजन बनाने में, भोजन में भी ब्राह्मण आत्माओं को बहुत ज्यादा समय जाता है। और घूमने फिरने में, छोटी छोटी बातों में फीलिंग बहुत ज्यादा फीलिंग करते, किसी ने कुछ कहा और सीधा अंदर चले जाती है बात। आत्मा की एक सूक्ष्म फिलॉसफी है कि आत्मा दुख स्वीकार करने के लिए जैसे तैयार रहती है, कोई कुछ आत्मा है 10 दिन तक सबने सुख दिया वो याद नहीं रहता है, जैसे किसी ने दुख दिया कि तुरंत उसको पकड़ के पूरा अंदर समा के उसके ऊपर गहन चिंतन चालू हो जाए, जैसे कि उसी बात के लिए रेडी थी आत्मा, कब एब्जॉर्ब करे, शिवानी में इसको पेन एब्जॉर्प्शन कहते, एब्जॉर्ब करती है आत्मा, जैसे स्पंज होता है ना उसे खींचता है, वैसे आत्मा जैसे तैयार थी कब मुझे कोई दुख दे, कोई कुछ बोले और मैं उसको पकड़ लूं और दुखी हो जाऊं, बाकी सारा अब तक का जो अच्छा बोला वो याद नहीं है। 10 साल से कोई आत्मा आज तक अच्छा बोला, आज खराब बोला वो याद रखता है। तो फीलिंग से भी आत्मा का टाइम वेस्ट होता है। और किससे होता है राजेश भाई,
अनावश्यक सूचनाएं इकट्ठा करना,
अनावश्यक सूचनाएं, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन कॉजेज पीसलेसनेस, ऐसी एक कहावत है इंग्लिश में, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ज्यादा अशांति, अनावश्यक सूचनाएं और संग्रह वृत्ति, अपरिग्रह, जैन धर्म में ना परिग्रह और अपरिग्रह बहुत सारा इकट्ठा करके रखना,
उसमें बुद्धि जाएगी थी,
उसमें बुद्धि अना जाती है।
कौन से कपड़े पहनने
हैं, कपड़े कपड़ों
में माला देख रहा है
और किसमें टाइम वेस्ट होता है, प्लानिंग बनाते, खाली प्लानिंग ही बनाते रहते हैं। आज की मूल्य में भी आगे बाबा ने बोला है, जो कुछ आत्माएं जो ना, जो जिन पर बोझ रहता है वो प्लानिंग नहीं कर सकती, प्लानिंग ही बनाते रहते पर सफल नहीं होता है उनका कुछ भी। तो बहुत प्लानिंग बनाने में, प्लानिंग कैसे बनाओ, अरविंद भाई एक स्लोगन था, विदेही स्थिति और साक्षी स्थिति में स्थित होकर प्लानिंग करो। ये दो स्थिति है
कल का स्लोगन।
विदेही स्थिति मतलब प्लानिंग भी जो करने है ना, कभी कभी योग की अवस्था में भी प्लानिंग जो किया जाता है ना वो बहुत शक्तिशाली होता है। हम ऐसे ही जो प्लानिंग करते हैं ना, कोई बहने प्लानिंग करती है ना, कल से बिल्कुल रोएंगे नहीं, दूसरे दिन बस 8 बजे से पहले कुछ तो बात हो जाती है और रो देते हैं। जिस दिन प्लानिंग करते कि कल से बिल्कुल रोना बंद, उसी दिन रोते हैं। तो प्लानिंग ऐसी नहीं बनाओ कि एकदम जोश में आके नहीं बनाएंगे, प्लानिंग बनानी है योग की भी जो प्लानिंग है, 6 मास की प्लानिंग बनानी है हमको अक्टूबर तक की पुरुषार्थ की, वो भी योग की स्थिति में बनाई जाए, साक्षी और विधेयी अवस्था। जब हम योग की स्थिति में, जैसे योग पूरा हो रहा है 4:45 के बीच, वो टाइम पे थोड़ी सी हल्की सी एकदम शक्तिशाली प्लानिंग की, क्या करना है मुझे उस दिन के लिए भी, एक दिन के लिए भी, एक हफ्ते के लिए भी, एक मास के लिए भी, 6 मास के लिए भी, एक दिन से चालू करो कि आज एक कमजोरी आत्मा की ऐसी रहती है हर आत्मा की, वो एक ही कमजोरी की वजह से वो पुरुषार्थ नहीं कर पाती। हर एक आत्मा की अपनी अपनी कोई एक ही कमजोरी है कि जो उसे रोक के रखती है, अगर वो पहचान लेती ये मेरी कमजोरी है तो बहुत आगे निकल जाएगी। और आत्मा का ऐसा है कि अगर वो 4-5 दिन भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर ले तो उसकी स्थिति शक्तिशाली बन जाती है। 4-5 दिन खाली, वो कमजोरी जो लंबे समय से चल रही वो 4-5 दिनों में अगर नहीं आई, वो 5 दिन खाली, तो स्थिति कहां से कहां ऊपर चली जाती है। तो प्लानिंग कर ली। तो ये था समय। फिर बाबा ने कहा शक्ति, शक्तियों को वेस्ट नहीं करो। कौन सी शक्ति की बात चल रही है? बाबा ने आगे जाके बोला है खजानों की बचत करो, बजट बनाओ, जैसे गवर्नमेंट स्कीम बनाती है बजट की, ऐसे तुम भी बनाओ, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन सारे, सारा विश्व तुम्हारा परिवार है। ये आगे बात बोली शक्ति यहाँ कौन सी, नहीं शक्तियों को वेस्ट, हाँ शक्तियों को वेस्ट नहीं करना है। तो ब्रह्मचर्य का खंडन एक, दूसरा एक तो शारीरिक बल भी है, हाँ वो तो सूक्ष्म शक्ति है, पर शारीरिक बल भी एक शक्ति है। बहुत ऐसे ही घूम रहे हैं, ये कुछ ऐसी अनावश्यक बातें कर रहे हैं कि जिससे शरीर ही थक जा रहा है, तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे। कोई
आज की मुझे मिल रहा अभी की, इसमें था पिछले 7 दिनों के बीच।
अच्छा, तो शारीरिक, शारीरिक भी अपने आप को इतना नहीं थका देना है कि पुरुषार्थ ही ना कर पाए। यहाँ तो नहीं, पर बाहर जो लोग रहते हैं ना, जो जॉब करते हैं, वो कितने थक जाते हैं, 2-2 घंटे तो ट्रैवलिंग करते हैं मुंबई में लोग लोकल से, क्या पुरुषार्थ करेंगे। 5 बजे निकले, 7 बजे पहुंचे घर 2 घंटे के बाद, कहाँ योग और कहाँ क्या। जरूरी है वो सब करना, पहला तो ये प्रश्न है, इतना भागदौड़ आवश्यक है संगम युग पर, अपने आप को समेटना है,
मजबूरी होता है उसको, तो
वो भी है, पर फिर भी है उसमें कोई ना कोई एक उनका स्वार्थ तो होता है, अगर चाहे तो अपने आप को संकीर्ण कर सकते, समेट सकते हैं वो,
नहीं करते देखने में आता है।
ज्ञानियों की बात चल रही है, अज्ञानी तो नहीं, जो ज्ञानी आत्माएं है, ब्राह्मण आत्माएं है, अगर वो चाहे तो समेट सकते हैं, परंतु लोभ भी है ना, पैसा खींचता है आत्माओं को, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करते हैं, मजबूरी भी होती है, मल्टीपल कॉजेस
होते हैं, कई बार मजबूरी होता है,
लेकिन पुरुषार्थ करने वाले तरीका निकालता है,
कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा
वो, तो क्या कर्मयोग भी कर सकते हैं उसमें, बहुत सारा
कर्मयोग तब तक संभव नहीं है जब तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जब तक बैठ कर योग नहीं है,
दिनचर्या में स्थिति आत्मिक दृष्टि की जरूरी है,
वो करने के लिए जरूरी है, ऊंची अवस्था है ना, बहुत ऊंची अवस्था है, यहाँ सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पाते, यहाँ सब कुछ होते हुए भी।
कर्मयोगी में पहुँच जाए तो कर्मातीत में जल्दी पहुँचते
हैं, वो तो है, जो कर्मयोगी है कर्मातीत अवस्था
कि पहले स्टेप है कर्म योगी अवस्था। डायरेक्ट कर्म को छोड़कर कोई कहे कि मैं ये सब छोड़कर एक कमरे में बंद करके पुरुषार्थ करता हूँ, वो सेवा मुझे नहीं चाहिए, कहीं जाकर अकेले में रहता हूँ किसी रिट्रीट सेंटर में और केवल 6 मास के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, संभव नहीं है। जैसे खालीपन आएगा तो बुद्धि भागेगी यहाँ वहाँ, 10 दिन करेगा इधर उधर, कुछ कुछ और करने की इच्छा होगी और कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। इसके लिए कर्म योगी बनकर ही कर्मातीत बना जा सकता है।
इसलिए पहले शक्ति शरीर को बचाने
के, वही हमारा विषय है कि शरीर को इतना नहीं थका दो कि पुरुषार्थ ही ना हो, क्योंकि शरीर की तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा को इसी तन में बैठकर संपूर्ण बनना है।
आत्मा थकती तभी जब उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते सेवा में,
सेवा में
हाथ की दिशा नहीं रहता
है,
बाबा का सेवा समझ कर प्रश्न सेवा समझते
जिसकी सेवा कर रहे उसको ही भूल जाते
हैं। हाँ,
और फिर टकराव होता है सेवा में, संघर्ष होता है।
सीजन में क्या होता है, सुबह 8 बजे लेके शाम को 4 बजे तक ऑफिस में, तो फिर थकावट नहीं होता।
पर अपने आप के लिए अपनी स्थिति को बनाने के लिए समय निकालना, चाहे कितनी भी सेवाएं हो, एकांत का समय। आज एकांत में मुरली चली है ना, किसी बाबा ने कहा ना, कोई कोई आत्माओं को संगठन में रहना ही अच्छा लगता है, बोलना बातें करना, परंतु मजा ये सब करना, पर वो सब बाह्य मुक्ता है। अभी समय है अंतर्मुक्ता का। एक समय आएगा बाबा ने सबको पता चलेगा कि यही एकमात्र साधन है,
अंतर समय वही काम आएगा,
बाकी कुछ काम नहीं आएगा।
इसके सिवा दूसरा कोई आधार
दिखाई नहीं देगा आत्माओं को, ऐसी स्थिति आने वाली है। तो शरीर को नहीं थकाना है अनावश्यक बातों में, जरूरी नहीं है फिर भी जा रहे कहीं, जितना हो सके न जाए तो अच्छा है। एक तो शक्ति, एक शरीर की शक्ति, संकल्पों की शक्ति, जहां जहां हम जिसको हम संकल्प, बाबा ने कहा संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है, एक अव्यक्त वाणी है, एक एक संकल्प में रचनात्मक शक्ति है। तो संकल्पों को वेस्ट नहीं होने देना है, व्यर्थ बातों में, छोटी बातों में, अनावश्यक बातों में, तो संकल्पों को बचाना है, शारीरिक शक्ति को बचाना है, और दृष्टि भी एक शक्ति है।
चारों से अध्यक्ष
अब आगे दृष्टि की क्या शक्ति है,
हमने जो नहीं देखना और
वो देख लिया, खींचता है ना, सबसे ज्यादा की क्या खींचता है देह को। उस दिन मुरली चली, आंखें बड़ी शैतान है, बाबा ने कहा आंखें शैतान है, सबसे ज्यादा क्या खींचता है आपको, देह ही खींचता है उसको, देह ही अच्छा लगता है। पता है बीमार पड़ने वाला है फिर भी खींचता है, पता है मरने वाला है फिर भी खींचता है, पता है बूढ़ा होने वाला है फिर भी खींचता है, पता है ये सुंदर ये नश्वर है फिर भी खींचता है। आत्मा को सबसे ज्यादा आकर्षण देह का है, उसको सारा संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी देह की तरफ उसका आकर्षण, और देह को देखना मतलब वो वशीभूत हो जाती है आत्मा। फिर आगे बोला ना, आज वशीभूत हो जाती है आत्मा, ये जो तत्व है तत्व उसको खींचते अपनी तरफ से, प्रकृति अपनी तरफ खींचती है, और जब तत्वों की तरफ आकर्षण है तो ऑटोमेटिक आत्मा की पावर कम हो जाती है, सबसे ज्यादा पावर इसी के कारण कम होती है आत्मा की। तो ये पावर ये बचाना है। आगे क्या बोला फिर बाबा ने, ये हो गया ना, इसका इतना ही है
शक्ति,
वेट, और फिर है संकल्प, समय, शक्ति और बोल। अभी बोल की शक्ति को कैसे बचाए,
बोल के
आज का स्लोगन है क्या है आशीष भाई, स्लोगन क्या है पहले बताओ, मुर्गी पड़ी नहीं पड़ी, टाइम नहीं मिला ये मत बोलना। बाबा ने कहा है मनन चिंतन, अभी एक मुरली भी चली ना साकार, टपकना चाहिए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान, तो आप ज्ञान का सागर है तो तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकते रहे। कली परसों और ज्ञान का एकमात्र साधन हमारे पास है मुरली, इसके लिए उसका चिंतन बहुत आवश्यकता है। सुनने से कुछ नहीं होता है, सुनना और गया, समझ लो, बार 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 उसी में रमन करना पड़ेगा। तो याद रहता, नहीं तो गया। फिर दूसरा दूसरा पॉइंट, हाँ तो संकल्प समय, हाँ नहीं बोल के बारे में, बोल की शक्ति को कैसे बचाए अनिल भाई, बोल की शक्ति को कैसे बचाए, बचत करो बाबा ने कहा, बजट बनाओ, खजानों को वेस्ट नहीं करो,
अनावश्यक अनावश्यक बात नहीं बोलना है, जितना जरूरत है उतना ही बोलना है।
बोलो वो अपने आप को ही सुनाओ, जो ज्ञान अभी दूसरों को सुनाते हो वो अपने मन को सुनाओ, 7 दिन का कोर्स जो दूसरों को कराते हो ना अभी अपने आप को कराओ कि मैं आत्मा हूँ परमात्मा सुनता है। बाबा ने कहा है अपनी आत्मा को कोर्स कराओ, जो दूसरों को सुनाते ना आप थोड़ी रही, समय बहुत कम है, अभी अपने आप को बताओ। अपना धर्मराज, धर्मराज पुरी में जाने से पहले अपना धर्मराज स्वयं बनो। और बोल क्या करना है, बोल बोल बोल।
8 बजे तक मौन रहना,
सुबह मौन, जरूरी नहीं है फोन करना किसी को या बात करना, अनलेस अंटिल फोन आए या अना बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ है तो ही बात करें। और शाम में भी वैसा ही,
शाम को
6 से 10, रात को फोन करते करते सोना तो उसका प्रभाव अमृत वेले पर पड़ता है, यहाँ वहां की बातें वर्णन करना, विस्तार करना कोई भी चीज का। बाबा ने कहा है ना जो 10 शब्दों में कह सकते हो उसको 50 शब्दों में कहना है। और
इसके लिए तो स्वयं लक्ष्य होना चाहिए कि हमें
लक्ष्य रहना है मौन रहने का, तब कहीं कम बोले, लक्ष्य ऊंचा रखना होता है। लक्ष्य ये रखना है आज मुझे मौन नहीं रहना है तो कहीं कम बोलेंगे दिन भर, थोड़ा सा उससे नीचे। अगर ये सोचेंगे मुझे कम बोलना है वो नहीं होता है, बोलना ही होता है, बोल तो आवश्यक है पर कंट्रोल। आज क्या बोला स्लोगन में, बोल में संयम हो तो एनर्जी बचेगी, बोल भी एक एनर्जी है। तो ये चीजों की क्या करना है, इनको वेस्ट नहीं करना है। अभी बचत बचत के बारे में क्या कहा बाबा ने, हाँ ये कम खर्च वाला नशीन वाली भी पॉइंट थी इसमें, स्लोगन जैसे तुम स्लोगन सुनाते हो यहाँ पे, खजानों की बचत करो, खजानों की वेस्ट मत करो, आगे है शायद वो ना, आगे इसमें है शायद नहीं नहीं ये इसमें वो है, वो सब्जेक्ट के बारे में, पास विद ऑनर और पास होना,
सारा सब्जेक्ट में पास
होना, चारों सब्जेक्ट के नहीं चारों सब्जेक्ट से सेवा करनी है, सेवा के निमित्त बनना है, चारों सब्जेक्ट से ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान से सेवा करनी है, ज्ञान के सब्जेक्ट में सेवा तो ज्ञान सुनाना, योग अर्थात प्रकाश विश्व की आत्मा धारणा,
ज्ञान सुनाना भी और ज्ञान प्रैक्टिकल में
इसका स्वरूप बन जाना भी सेवा है, उसका स्वरूप बन जाना भी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है वो,
सबसे
ऊंची सेवा।
जैसे तुम वाणी से ज्ञान से किसी को बाबा का
परिचय जो देते हो, संबंध जोड़ते हो, वैसे वही बोला ना, सूक्ष्म स्थिति से मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति से आत्माओं का संबंध जोड़ो बाप से, तो वहां पर बोले बाबा ने बोला ना पास विद ऑनर और पास, जो चारों सब्जेक्ट से सेवा के निमित्त बनते हैं वो पास विद ऑनर, बाकी जो केवल पास होते हैं उन्हें धर्मराजपुरी से पास होना, ये यहाँ पूरा हुआ। फिर है जमा करने की बात, अपना खजाने, नहीं नहीं खजाने नहीं, वेट कम करो, तो उसमें 6 प्रकार के बताए बाबा ने बोझ, कौन कौन से, एक तो स्वभाव संस्कारों के वश, 2 बुद्धि का अभिमान, ज्ञान में बुद्धि का अभिमान, ज्ञान में बुद्धि का अभिमान क्या होता है,
संजय भाई
मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, मैं बहुत अच्छी मुरली चलाता हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, मैं इतने, हम बहुत पुराने हैं, तुम तो अभी आए हो, तुमको क्या पता यहाँ का क्या है, हम तो बहुत पुराने हैं,
ज्ञान का अभिमान।
और
नाम मान,
नहीं नहीं ये नहीं नहीं इसकी इसी का
नहीं, फर्स्ट पॉइंट
तुमको तो आता ही नहीं सुनाना, ऐसे थोड़ी सुनाना सुनाते। एक होता है वैराग्य अभिमान, वैराग्य अभिमान पता है, मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, तुम्हारा कोई त्याग है, सारे तो ज्ञान में चलते घर पे, यहाँ आगे क्या बड़ी बात है, हम तो संघर्ष करके आए, त्याग कितना बड़ा त्याग है हमारा। एक व्यक्ति था वो भक्ति में सुना थे ना, वो हमेशा जहां पर भी भाषण करता था एक बात जरूर बताता था कि 30 साल पहले मैं बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा सेठ था, मैंने अपनी सारी संपत्ति को लात मार दी और फिर मैंने ये मार्ग चुना। तो किसी ने एक बार कहा शायद लात ठीक से लगी नहीं। वो बात उसको जहां भी जाता था ये बात जरूर सुनाता कि मैं बहुत बड़ा आदमी था, मैंने सारा छोड़ दिया। उसका अभी क्या अतीत है, उस अतीत का कोई चिंतन की क्या आवश्यकता है। अतीत अर्थात समाप्त हो चुका है, भूतकाल है, वो मुर्दों को ढोने की जैसा है। अतीत अर्थात राख है, चिंगारी भी नहीं है, वो राख है, उसका क्या चिंतन। बहुत सारी आत्माएं अतीत में जीती है या भविष्य में जीती है। अतीत और भविष्य के चक्के के दो पार्टों के बीच में, दो नहीं के बीच में उनका जीवन है, उसी में जीती है, तो वो कोई जीवन नहीं। इसी से परेशान रहती है, भविष्य में क्या होगा, ये होगा, और जो हो चुका है, जो हो गया हो गया, अभी उसका क्या है। अभी नया दिन है, अभी नई रात है, नया सूर्य, नया चांद, अभी है। सब कुछ नया चालू करो वापस। क्या क्या हो गया, तीन हो गए, स्वभाववश, संस्कारवश, बुद्धि के अभिमान वश, नाम मान के स्वार्थवश। ये है वो नाम मान, मेरा नाम हो जाए यहाँ पर यज्ञ में, मैं आगे रहूं, आगे रखना, आगे क्यों नहीं रखा, हमको क्यों नहीं बुलाया, यहाँ से नीचे जाने हैं, हम कार में जाएंगे, भाषण देने जा रहे और बस में कैंडल लाइटिंग क्यों नहीं बुलाया, ये माया है सॉरी। तो वो एक और स्वयं को साल्वेशन की प्राप्ति के वश, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं होगा तो सेवा कैसे करेंगे। आलस्य अभिमान वश, आलस्य अभिमान, आलस्य अलबेलापन के वश। तो ये छह बातों का बोझ, बाबा ने कहा वो जो जन्म जन्मांतर का बोझ है वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये जो बोझ है ब्राह्मण बनने के बाद, विश्व सेवाधारी बनने के बाद, विश्व कल्याणकारी बनने के बाद, जो बोझ है वो एक का 10 गुना है। यानी तो आत्मा जो बनते हैं उनकी सर्विस के लिए भी बाबा ने क्या कहा, एक डिस सर्विस 10 सर्विस को समाप्त कर देती है, जैसे रबर से मिटा देते हैं, रबर का उदाहरण दिया ना, रबर से जैसे मिटा देते हैं। ये सेंटरों में ऐसा ही है ना, बहुत समय 10-15 साल से सेंटर है, बहुत सेवा करो, एक कुछ हो गया तो लोग तो जैसे तैयार है न्यूज़पेपर में देने के लिए, पत्रकार ये सारे लोग, वैसे चांस ताक में है।
सब चेक करने आएंगे, तुमको कितनी पढ़नी है, सब चेक करेंगे।
तो बाबा ने कहा ऐसी जो आत्माएं हैं जो डिसर्विस के निमित्त बन के, उनकी फिर निशानियां हैं बहुत सारी। कौन कौन सी, खुशी शक्ति क्या क्या,
संतुष्ट योग नहीं लगेगा उसको,
योग में शक्ति और प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा, एक दूसरा संतुष्टता नहीं होगी, खुशी शक्ति नहीं होगी, और देह विभान के वश विघन रूप बनेंगे वो। और भी पहला पॉइंट और एक है दूसरा, पर वो अपने आप को मियां मिठू समझेंगे, खाली खाली अंदर से खोखलापन है, पर दिखाने के लिए अपने आप को खुश मिजाज रहेंगे, और दूसरे भी समझेंगे ये बहुत अच्छे पुरुषार्थी और खुश मिजाज है, वो अपने आप को इस तरह से ढक लेंगे, पर अंदर खालीपन है, खोखलापन है, उलझन है, वो सर्विस में विघ्न भी बनेंगे। और बाबा ने ये भी आगे बोला कि क्योंकि उनका वेट ज्यादा है, उनको मानसिक बीमारियां भी थी, मानसिक अशांति होगी, मानसिक चिंता और मानसिक बीमारी, उनका वेट ज्यादा है, इसके लिए उनकी रफ्तार जो है पुरुषार्थ की वो भी कम होगी, स्पीड हाई जंप तो क्या, वो दौड़ भी नहीं सकेंगे, जिन आत्माओं के और बोझ है, बोझ की बात चल रही है, कौन से बोझ, संस्कार, स्वभाव, अभिमान, बुद्धि का, ज्ञान का अभिमान, आलस्य, अलबेलेपन, ये भी बोझ है, नाम मान शान की तृष्णा, ये भी बोझ है, साल्वेशन, ये मुझे ये चाहिए नहीं मिल रहा है, वो विघ्न रूप बनेंगे, और उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी, प्लानिंग बनाते रहेंगे पर सफल नहीं होंगे,
बोलेंगे लेकिन विनाशक।
तो कितनी सूक्ष्म बात है, एक एक लाइन जो है मुरली की कितनी इम्पोर्टेंट है, मुरली एक ऐसा फल है कि जिसका नहीं छिलका है ना आम गुठली, मतलब वो कुछ भी त्यज्य नहीं है उसमें, कि ये छिलका निकाल दो और अंदर का बीज निकाल दो, ऐसा एक फल है कि जिसका रस युक्त है वो। हाँ हाँ, एक एक लाइन में, एक एक महावाक्य में पावर है। वेस्ट कुछ है नहीं, किसको छोड़े, कोई सोचे कि इसका मैं ये लाइन छोड़ देता हूँ, सेकंड पैर से चालू करता, अरे इसमें कितने पावर है।
भगवान का
अमृत ज्ञानामृत, चिड़ियों ने, तुम चिड़ियों ने सागर को हब किया है, अभी था ना एक हफ्ते में।
चिड़ियों और उसके अपोजिट एक दूसरी बात की, एक तो चिड़ियों ने हब किया, दूसरा जंगल को कलम बनाओ,
जंगल को कलम बनाओ, तो भी वो लोग ज्यादा से ज्यादा, बात है ज्ञान का सागर, वो लोग ज्यादा से ज्यादा शास्त्र लिखेंगे और क्या लिखेंगे। ये था वहाँ पर ये तो सागर है। बाबा ने कहा, अरे हाँ वो पॉइंट थी, अगर तुम बाबा ने अब तक जो सुनाया है उसकी बैठ गीता लिखोगे, वो जो छपाओगे, तो ये कमरा भी मकान से भी बड़ी जगह लगेगी गीता होती है। ये पॉइंट थी ना,
उसके साथ में चिड़िया कर रही
है। तो चलो आगे, अभी अभी वो पाप की, वो धर्मराजपुरी की बात है ना, वहाँ पर यहीं पर कि धर्मराजपुरी में जाने से पहले स्वयं का धर्मराज स्वयं बनो, पापों की पाप कर्मों की गुह्य गति, पाप कर्मों की गति अति गुह्य है, जैसे कर्मों की गति हुई है वैसे पवित्रता की परिभाषा की गति भी हुई है। एक मूल्य में बाबा ने कहा है, धर्मराज के द्वारा हिसाब किताब चुकते होने की गति भी हुई है। तो यहाँ पे क्या बोला, अपना चौपड़ा खोलो और देखो पाप कितने हैं और पुण्य कितने जमा है, खुद ही देखो। पाप अर्थात परिभाषा तो समझ में आ गई ना, पाप की देह देखा मतलब पाप, बाप के सिवा किसी को याद किया अर्थात पाप। हाँ अभी, और एक का 100 गुना ज्ञान में है, क्योंकि
ज्ञान में बस जानकारी है
इस हिसाब से।
ये दो पाप याद रखे तो सब पाप हो
जाएंगे। देह को देख लिया तो बस पाप, देह को देखा और अच्छा लगा, ये देह अच्छा है,
सिवाय किसी को याद किया
पाप। कितनी बड़ी बात है। और क्या है इसमें, फिर वो बारिश आ रही है बाहर, सेवा की तीव्र गति है
बारिश मौसम में,
बजट बनाओ,
बजट
पोता
मेल नहीं सका, सोयल की चेकिंग,
जैसे बारिश का सीजन है, जैसे ब्राह्मणों का सीजन है कमाई करने का,
कमाई करने का सीजन है,
पुण्य का खाता
जमा करो, पापों को भस्म कैसे करें।
एक बात ये होगा कि पास में कामना जो है वो
हर सब्जेक्ट में
करते हुए देखेंगे,
देखेंगे।
पार्टी को धर्मराज की सजा से
पास होना पड़ेगा। पाप को कैसे नष्ट करें, ये एक विषय है चिंतन का।
चार ये है विष्णु के अलंकार,
चार
अलंकार से पाप बदा से मन मना भाव
मेन तो एक ही विधि है, वो मदद करेगा। पाप विनाश होने की एक ही विधि है, आत्मा समझकर बाप को याद करो। परम धाम में बीज रूप जो स्थिति है उसी से पाप विनाश होते हैं। फरिश्ता स्थिति, योग का ज्ञान का मुरली सुनना सुनाना, मनन चिंतन एकांत में, ये सब सहयोग है उस अवस्था के लिए, क्योंकि वो अवस्था ये सब के सिवा नहीं आ सकती है। सारे दिन भर आत्मिक स्थिति का अभ्यास, रूहानी ड्रिल का अभ्यास, बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास, नुमा शाम का योग, बैठकर योग, चलता फिरता योग, ये सब सहयोग है उस अवस्था के लिए। पर विनाश जो हो रहे हैं वो पाप बीज रूप अवस्था में,
योगाग्नि,
इसके लिए अमृत वेला उस बीज रूप अवस्था का, उसका टाइम थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है रोज, 10 मिनट 15 मिनट।
ज्ञान माना पाप होने नहीं देगा, योग माना पाप,
ज्ञान एक परिस्थितियों में हमको अचल रखता है, ज्ञान से सारे दिन भर, योग तो रखता है वो तो सूक्ष्म है बहुत, पर ज्ञान बिना योग के, बिना ज्ञान के योग संभव नहीं है।
ज्ञान
माना जैसे कि ये
ज्ञान माना केवल मुरली पढ़ना सुनना ये सब नहीं है, उसका समझ के समझना चलना मानना और बनना अप्लाई, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इज ज्ञान।
सेवा में काम में आते हैं वो, तो बाकी अलग हो गए।
सेवा में परिस्थिति में जब ज्ञान की बातें रहती हैं वो थोड़ा सा आ
जाएंगे। एक पॉइंट और था, ये जो आत्मा है वो परिस्थिति परिस्थिति व्यक्ति वैभव के उनके सामने हलचल में आ जाते हैं, ये भी एक पॉइंट है, उलझन में आ जाते हैं व्यक्ति परिस्थिति दिन भर में हलचल में आ जाते हैं वो आत्मा, ऐसी आत्मा है। फिर पार्टियों से मुलाकात, अभी चलो इधर से चालू करो, दो पैराग्राफ है उसमें, इनको इनको बोलो 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 आशीष भाई, शुभ चिंतन और स्वचिंतन, जहाँ शुभ चिंतन स्वचिंतन है वहां पर क्या नहीं है, व्यर्थ चिंतन नहीं है, जहाँ शुभ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण किसका दिया दीपक भाई, एक उदाहरण दिया है बाबा, बढ़िया चीज खाने की एक बार टेस्ट रह गई कि बाद में फिर घटिया चीज स्वीकार नहीं करते, शेर को एक बार खून मिल गया बाद में घास खाता है क्यों, संसार तो ऐसे ही है ना, एक बार परमात्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो गया कि संसार के सुख सारे फीके है उसके सामने, डिवाइन नेक्टर एक बार मिल गया तो ये सब कुछ नहीं है उसके सामने, वो उदाहरण दिया बाबा ने। और फिर आगे आगे और इमीडिएटली दूसरा ही उदाहरण दिया, वो ही वाला जीव जंतु और मछली,
मछली के संबंध समुद्र
नहीं, बाबा ने उसमें उससे पहले एक वाक्य कहा है, स्वरूप बनना, समाय बहना, स्वरूप बनना, चिंतन करना अर्थात स्वरूप बनना, स्वरूप बन जाना, जिस वाक्य हम पढ़ रहे हैं उसका तो नहीं की बात में है, जैसे मछली कहाँ होती है, सागर, सागर से सामग्र से निकालो तो खत्म, वही उसका संसार है। तो ये सागर कौन सा है, ज्ञान सागर हमारा संसार है, इस सागर से अगर बाहर निकलो तो बाबा ने पूछा ना चक्र लगाने की दिल तो नहीं होती, यहाँ से निकल कर बाहर
जाने की खत्म,
गए तो खत्म समाप्त। इसके लिए ब्राह्मणों के लिए जो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, तो यहाँ का गायन बाबा ने कहा ब्राह्मण है चोटी, चोटी अर्थात ऊंची स्थिति, तो झंडा ऊंची स्थिति में जाके लग रहा होगा ना विजय का, वो बोला। ये हो गया फर्स्ट, नेक्स्ट अभी फिर है,
इसके लिए
क्या पुरुषार्थ कर रहे हो इस समय, सुनना सुनाना या अनुभव कराना, इसके लिए कितना अच्छा है, किस कौन सा उदाहरण दिया चिमन भाई, एक उदाहरण है वहां पर, जो इन्वेंशन करते हैं वो क्या करते हैं, साइलेंस में एकांत में जाते हैं, खोए रहते हैं वो लोग, और वहां से कुछ इन्वेंशन होता है, तो वैसे तुमको भी एकांत, एकांत की दो तीन परिभाषा है, तीन मुख्य, पहला एकांत अर्थात एक के अंत में होना, एकांत अर्थात एकाग्रता, सॉलिट्यूड एंड कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता एकाग्रता, एकांत अर्थात अनुभवी मूर्त, तीन परिभाषा दी एकांत की। तो बाबा ने कहा एकांत मतलब आकर्षणों से दूर, संसार के आकर्षण से मन एकांत हो, एक वाक्य
अकेले जाकर बैठना नहीं,
अकेले कमरे में बैठना कोई एकांत नहीं,
मन से एकांत संकल्प बाहर नहीं लगाते,
संकल्प यहाँ वहाँ जो भटक रहे वो एकांत नहीं, एकांत अर्थात अनुभवी मोक्ष, एकांत अर्थात एकाग्र, एकांत अर्थात एक के अंत में खोया, स्थूल एकांत की भी आवश्यकता है इसमें, सूक्ष्म भी चाहिए और स्थूल भी है, बाप के याद में खो जाना वो भी जरूरी है, पर स्थूल एकांत जो होता है ना, सारे दिन भर सबके बीच में संगठन में कंटिन्यूअस रहे अगर आदमी, तो उससे थोड़ा उसको अपना महत्व है संगठन का, पर बाबा ने कहा अभी अंतर्मुखता की आवश्यकता है, अंतर्मुखता के आकर्षण, बाहर के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो, इसकी आवश्यकता है, काम आएगा, जब कोई सहारा नहीं दिखेगा तो ये एकमात्र आधार होगा, इसके उदाहरण। और किसी मुरली में बाबा ने कहा दिसंबर 1990 दादियों से मुलाकात, बाह्य मुक्ता का सुख और अंतर्मुखता का सुख, चाहे कोई कितना भी वर्णन करे बाह्य मुक्ता में बहुत अच्छा रस है, पर बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता में जो रस है वो कभी बाह्य मुक्ता में हो नहीं सकता, बाह्य मुक्ता के रस में और अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें दिन रात का अंतर है, अव्यक्त महावाक्य है। अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, दिन रात का अंतर है, इसके लिए अंतर्मुखी बना। वो अंदर, अंतर्मुखी अंदर बाहर है ना, इसको अंदर ऑपरेशन से प्लास्टिक सर्जरी करके उसको अंदर और अंदर बात करो अपने आप, बाहर नहीं। और क्या बोला, हो गया क्या, हो गया मुरली फिनिश?
एग्जाम्पल करेंगे
वरदान
स्व
परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, दिल सब दिल पसंद सफलता प्राप्त करोगे। और तीन बातें कौन सी, वाणी वाइब्रेशन और वृत्ति शक्तिशाली। लेकिन यह सफलता तभी मिल सकती जब एक ही समय वृत्ति वाइब्रेशन वाणी तीनों शक्तिशाली, ठीक है। ये तो अभी एक बार हमने इसको पढ़ा, फिर इसका चिंतन किया, इसको अभी रिवाइज किया, पर केवल इतना होने के इनफ नहीं है, इसका और थोड़ा गहराई में चिंतन चाहिए। पर कल कल तक होने तक कल नहीं मुरली आ जाएगी, ये गया, अभी रात बाकी है, सोना भी तो है, अमृत वेला भी शक्तिशाली होना चाहिए, माल इतना है। बाबा ने कहा बाप तुमको इतना माल देते हैं, अभी चार पांच मालदार बनाते हैं तुमको, बाबा के पास इतना ड्रामा अनुसार माल निकलते रहता है बाप से, इतना माल है क्या करें। ये अभी पूरा हुआ नहीं तो कल सुबह दूसरी आ जाएगी, तो ये रह गई। इसके लिए एक चार पेज की मुरली पढ़ने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है, इस पे मास्टरी में लाने के लिए, इसका चिंतन मनन स्वरूप। और ये केवल पढ़ना नहीं है, 5 मिनट में 10 मिनट में अंडरलाइन करना या लिखना या पॉइंट्स नोट करना, इससे कुछ नहीं होगा। डेप्थ, डेप्थ में जाओगे तो ही हीरे निकलेंगे। एक कॉपी हर एक के पास चाहिए मुरली की, कैसे भी करके लक्ष्य कर रखे कि हमारे पास एक पर्सनल एक कॉपी हो स्टडी के लिए। स्टडी है ना, स्टूडेंट है ना, ये कोई बाबा ने कहा ना पिछली बार, ये नहीं है कोई सत्संग तो है नहीं उस तरह का, यहाँ तो पढ़ाई करनी होती है, स्टूडेंट है, पास ना पास जैसे वहाँ फेल होते हैं वैसे यहाँ भी फेल होंगे। चलो एक हफ्ते में क्या बोला, 10 मिनट है हमारे पास। अपना अपना पार्ट है, कोई नहीं छूट सकता, बीच में से मोक्ष किसी को नहीं प्राप्त सकता, ज्योति ज्योत कोई समा नहीं सकता, ब्रह्मलीन कोई नहीं हो सकता, बीच में से कोई छूट नहीं सकता, मोक्ष किसी को नहीं प्राप्त हो सकता।
एक माइंड ही कॉन्ट्रैक्ट लेता,
बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है अमीर भाई, गुलगुल बनाने का। और परस्पर आपसी प्रेम से सेवा करो तो सफलता निश्चिंत है ना, सफलता के लिए बहुत सारे स्लोगन है। और क्यों कहते हैं, भोलानाथ क्यों कहते हैं, 10 कारण बताओ मुरली का छोड़कर।
माता जी बीर बना देंगे जी,
भोलानाथ क्यों है भगवान, केवल यहाँ पर ही भोलानाथ नहीं है, वो भक्ति मार्ग में भी शिव को भोलानाथ ही कहा गया है। वो उस दिन बोला उसको छोड़ के
बाकी सब रहे,
प्रसन्न जल्दी होता है ना शिव, आशुतोष कहते हैं भक्ति मार्ग में शिव को, आशुतोष क्यों कहते, जल्दी प्रसन्न हो जाता है, जल्दी वरदान दे देता है, इसके लिए भोलानाथ है, देखता नहीं क्या है कैसा है, वो दिखाए ना तुरंत, उसको ज्यादा सोचता भी नहीं। तारकासुर का उदाहरण दिया था ना, तारकासुर ने तपस्या की, जब शिव की शादी नहीं हुई थी शंकर की, वो ब्रह्मचारी था तब, तो बहुत तपस्या करता है, वो प्रसन्न होते कहते वरदान मांगो, तो बोलते मैं अमरत्व का वरदान, तो बोलते ये संभव नहीं है, तो वो क्या कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दो कि आपका पुत्र ही मुझे मेरी हत्या करे, उसकी तो शादी नहीं हो तो होने वाली भी नहीं रहती है, तो मूर्ख बना दिया ना उसको, तो बाद में वो चला जाता है तो वो हंसता है, हा 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 देखा मूर्ख बना दिया, भोला
भोला,
तो भोलेपन का गायन तो वहां पर भी है। और भोला की आता है होमवर्क देता है, बाबा पूछता है नहीं पूछता वो अलग बात है,
भूल जाता
है। भूलता तो नहीं है वो, इज्जत इज्जत रखनी होती है उसको। उसको पता है अगर वो ऐसा बोल दे जिसने होमवर्क किया खाली वही सभा में बैठेंगे बाकी आउट।
अगली
बाबा ने उस दिन बोला ना बच्चे फंक हो जाएंगे बाबा अगर बता दे। क्या था वो पॉइंट, एक सकारवानी थी अभी, बच्चे फंक हो जाएंगे अगर बाबा बता दे। नंबर वार है सब यहाँ पर,
हाँ क्या बना
तो बाबा
नंबर वार दिखाए ना,
हाँ तो फंक हो जाएंगे। हमको पीछे क्यों, हम क्या कम पद पाने वाले? अच्छा ठीक है, हम नहीं आ रहे, जाओ, वैसे भी तो पद नहीं मिलने वाला है तो क्या करे आके, पहले ही बता दिया। तो शिव कल्प कल्प विजयी,
एक बार अगर डांट भी दे ना थोड़ा सा आंख दिखा दे
बाबा, डांटता कहाँ है,
चले जाए, नहीं उठ के चले जाए। हाँ।
और बाबा बताता बोलता कैसा है देखो ना, अव्यक्त वाणी चलती है तो तुम ये हो वो हो ऐसे हो वैसे हो, एक पहला पैराग्राफ समान वाला रहता है, सीमा करता है ठीक है। ऐसे कभी बोला हे पतितात्मा आ गए वापस, मेरी इतनी ग्लानी की तुम लोगों ने आधा कल और अभी वापस आ गए वर्षा लेने, शर्म नहीं आती तुम्हें? सुनाने का ढंग कैसे सुनाता है वो शीतल, लास्ट हफ्ते में था ना शरण नहीं। अरे तुम अपने बाप को भूल रहे, ये कोई अच्छी बात है? मंडे को मुरली में था ना, और क्या एक हफ्ते में अनिल भाई बोलो ना कुछ। अरे ये भगवान के पैर इस भूमि पर पड़े हैं, इस भूमि का विनाश कभी हो नहीं सकता है, कितनी सुंदर पॉइंट है, वाह। अविनाशी खंड है भारत, सदैव कायम रहने वाली ये भूमि है। संकल्प श्वास समय संकल्प को सफल करो तो जन्म सिद्ध अधिकार है। सारे पॉइंट याद है, बहलाने आए हैं, मेले मलाकड़े में तुमको जाने की जरूरत नहीं, घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेश होने आए हैं, हवा खाने नहीं आए हो तुम। जितना निश्चय उतना उतना याद कर सकेंगे।
बाबा ने कहा खुद भी भटके, हमें भी भटके,
तुमने खुद भी भक्ति में भटके और मुझे भी भटकाया।
और बोला कि बाप ने कहा और फट से किया, बाप समझेगा कि बाप से लव है,
लव है, आज्ञाकारी है, फरमान बरदार है। पड़ी है, हिम्मत दो चीजों में, स्वपुरुषार्थ और विश्व कल्याण। पुरुषार्थ में बार बार अगर हार होती है फिर भी हिम्मत नहीं हारनी, चाहे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे और कई कई ऐसा समय आ जाता है कि अमृत वेला में ये में सब स्थिति डाउन, हिम्मत हारनी नहीं है, वापस शुरुआत करनी है, गिरने के बाद वापस उठना है, बस खुद ही उठना है, कोई उठाएगा नहीं, गिर गए उठो अभी वापस
श्रेष्ठ।
कम हो जाती है, होना ही है, लड़ाई है, माया जबरदस्त है, माया सर्वशक्तिवान है, बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी शक्ति से में, माया महारथियों के साथ महारथी बनकर लड़ती है, बलवान के साथ बलवान, रुस्तम के साथ रुस्तम, महावीर के साथ महावीर, जो माया की गोद में बैठे हैं उनको माया कुछ नहीं करती है, जो सो रहे हैं कोई श्रीमद का फॉलो नहीं उनको माया हाथ भी नहीं लगाती, पर जो माया से युद्ध कर रहे हैं उनको तो कुछ ना कुछ करेगी ना, ऐसे छोड़ देगी उसको, हरा रहे हो वो तो मरते मरते भी उसको तीर लग गए 10-12 अभी मरने वाले, फिर भी एक चाकू कहीं देखेगी और जाते मारते मार के दम तोड़ेगी,
दूर से ही मार के चलेगी,
ठीक ना है। वो कभी हार खाती है क्या, वो कभी हिम्मत हारती, चाहे कितना भी हमने उसको गिरा दिया फिर भी एक बार तो करती है। और क्या कहा, सुख मिलता है
इस नाटक में, कोई भी आत्मा को मोक्ष नहीं
हो गया। अच्छा आप जाके
माता जी ने मोक्ष
बाहर, अगर ये याद रहे कि हम संगम में युग,
ये अगर खाली इतना भी याद, हाँ तो ये भी मनमना भव है, संगम युग निवासी होना। फिर बाबा ने वो प्रदर्शनी में संगम युग दिखा और 10-12 पोशाक सफेद पोशाक सारी ब्राह्मण और फिर वो ऊपर तपस ऊपर संगीन, तो समझेंगे कि ये ही वो बन रहे हैं,
दो चित्र बना लो कभी का एक
ऊपर
बन रहे हैं।
फिर सद्गुरु के बारे में भी मुरली थी एक, सद्गुरु अर्थात संपूर्ण सत्य, सच्चा सच्चा बाप है, तुमको सच्चा सच्चा बनना है,
गुरुवार बोलना रॉन्ग है, सतगुरुवार।
हाँ सतगुरु गुरुवार बोलना, गुरुवार बोलना रॉन्ग है,
सतगुरु
रॉन्ग नहीं, भूल है। भोजन शुद्ध हृदय से तीन बातें हो गई, कौन कौन सी बोलो? एक तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, दूसरा ताकत मिलेगी, और तीसरा वहीं पर है, रिफ्रेश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि एक कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा कि जो कहेगा कि हम बाबा की याद में भोजन बनाते, बाबा चुनौती देते हैं। बाबा क्या चुनौती देते कि कोई ब्राह्मण बाबा योग में भोजन बनाए, पर तुम्हारी अभी वृद्धि हो नहीं, तुम्हारी अगर कोई भोजन बनाए तो बहुत वृद्धि हो जाए, पर वो अभी होगी नहीं, वृद्धि धीरे धीरे ड्रामानुसार होनी है। ऐसे समय आएगा कि बहुत जब वृद्धि हो जाएगी तो महारथी भी इधर रहेंगे, वो भोजन बनाएंगे तब, पर अभी नहीं। जब वृद्धि हो जाएगी योगी आत्माओं की तब। बाबा ने एक बहुत पहले एक संदेश दादी के द्वारा लाया था, उसने कहा था अगर कोई याद में रह के भोजन बनाए और खाए तो 50% प्योरिटी अचीव्ड। बहुत पुराना, ये पब्लिश नहीं हुआ है कहीं, सुना मैंने क्लास में किसी दादी के, इसमें अव्यक्त बाप दादा का संदेश, अगर कोई भोजन याद में बनाए और याद में खाए तो 50% पवित्रता स्वतः ही आ जाएगी, 50% के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और क्या कहा, एक तो भोजन का हो गया, और
तुम्हें काल कभी खा नहीं सकता,
काल तुम्हारे दर पर कभी आ नहीं सकता, कालों का काल,
पहले राजा की मरना सिखा देते हैं,
ऐसा मरना सिखा देते हैं जो काल
खा ही नहीं,
मानव मल बना दे,
जन्म हुआ जब ही मर गया ना, इसलिए
कहाँ पर
नहीं
है। हाँ ब्राह्मण जन्म नया जन्म है, द्विज संसार में भक्ति में ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, द्विज अर्थात नया जन्म, सेकंड बर्थ, और नया जन्म होता है तो पुराना सब भूल जाती है ना आत्मा, तो यहाँ पे भी
मर मर के जीव
रहते हैं, कभी कभी जिंदा हो जाते हैं वो अलग बात है, ये नया जन्म। और दे ही नहीं सकता, वृत्ति भी नहीं है, वेद जप तीर्थ ये सबसे मैं नहीं मिलने वाला, वेद शास्त्रों से मैं नहीं मिलने वाला। और आंखें बहुत धोखा देती है, तुम्हारी आंखें सिविल, चक्षु सिविल बनाओ,
सिविल चक्षु।
और वरदान बोलो थोड़े, ज्ञान कैसा है, ज्ञान धन है,
ज्ञान धन है, तो
धन का राजा है, क्या क्या होता है ज्ञान धन से,
दूसरे धन प्रकृति
सारे, ये सूक्ष्म, ये जो ज्ञान धन है स्थूल धन को खींचता है, एक जिनके पास अभी ज्ञान धन जितना द्वापर युग से, उनको ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नौकरी सर्विस करने की जरूरत नहीं, आप ही ड्यूटी, घर ही जन्म ही ऐसे घर में होगा कि सब कुछ है, राजा और महाराजों के घर में जन्म होगा, अंतिम जन्म तक ऐसे ही होगा, मतलब अंतिम जन्म में भी ज्यादा कमाने की जरूरत, स्वतः ही सब मिलते जाएगा, जिनके पास अभी जितना ज्यादा ज्ञान है उनको धन कमाने की कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी,
सारे कल्प का फाउंडेशन
अभी है, सारा स्वतः ही मिलते जाएगा, जैसे मुंबई में लोग भागते हैं ना धन के लिए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो सब करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही मिलते जाएगा। तो ज्ञान धन स्थूल, फिर बाबा ने कहा पद्मा पदम, पद्मा पदम पति बनाता है, राजाओं का राजा बनाता है, और प्रकृति भी दासी बन जाती है, प्रकृति के साधन भी स्वतः मिल जाते हैं, भागना नहीं पड़ेगा कोई चीज के लिए, कितना अच्छा वरदान, निकालो माल, निकालो थोड़ा, बाबा ने बहुत माल दिया है, केवल राजा नहीं, राजाओं के राजा बनते हो तुम ज्ञान धन से। गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिहमिज्जति, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ नहीं है, इसलिए हे अर्जुन ज्ञानवान बनो। अच्छा ये हो गया, और दूसरा वरदान, एक मास्टर सर्वशक्तिवान वाले बहुत सारे, दो तीन दो वरदान है, शक्तियां सब क्या है तुम्हारी, सेवाधारी, सेवाधारी है, जब चाहो जहाँ चाहो जिस रीति से चाहो इनको ऑर्डर करो, वो हाजिर होगी, तुम्हारे ऑर्डर के लिए जैसे कि वो इंतजार कर रही है, जब चाहो जो रूप, वो दूसरा वरदान में था, जब चाहो जो रूप धारण कर सके, या कभी जलाने वाला कभी शीतलता वाला, अथॉरिटी बनो अनुभव की। दोनों वरदान लगभग सेम थे। सुमान के सीट पर रहो तो शक्तियां स्वतः ही आएगी।
कल कल के विजयी हैं ये स्मृति रही।
और
ये हो गया था।
दो तो ये थे मास्टर सर्वशक्तिवान वाले, फिर वो एक ज्ञान वाला था, फिर और स्लो और वरदान सिद्धि स्वरूप। तुम्हारे एक एक संकल्प में कितनी शक्ति है?
संबंधों की
शक्ति। नहीं वो दूसरा, एक एक संकल्प में इतनी शक्ति कि जो चाहो वो कर सकते, क्योंकि तुम्हारा हर संकल्प श्रेष्ठ कल्याणकारी शुभ है। तुम्हारे संकल्प सिद्ध होते क्योंकि श्रेष्ठ है कल्याणकारी
शुभ है।
अर्जी डालने वाले नहीं, राजी रहने वाले उसी में है। फिर ये डबल शक्ति तुमको प्राप्त है, एक तो बाप के प्यार की शक्ति और दूसरा परिवार के प्यार की शक्ति, परिवार से संबंध की शक्ति। स्नेह अविनाशी मिलता है, और कैसा मिलता है? सहयोग, सदा सहयोग मिलता है परिवार से। इसके लिए तुम वरदानी आत्मा हो, बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में तुम वरदानी आत्मा हो। और भी कोई स्लोगन है?
विदेही बनना है,
सदा परिस्थितियों के हलचल से बचना हो तो परे रहना है, बचना है तो विदेही बनने का अभ्यास करो। तो अभी अगले 7 दिनों में जो भी मुरली आएगी उसको इस रीति से लो कि इस मुरली से कौन सी पॉइंट मेरे लिए है, एक इस मुरली से जो पुरुषार्थ की पॉइंट है उसको प्रैक्टिकल में लाना, और टारगेट 6 मास का या 1 मास का या 1 दिन का या 1 हफ्ते का, लंबे से समय से चली आ रही हुई जो भी कमजोरी है उसको समाप्त करना। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि सृष्टि के कयामत से पहले अपने कमी कमजोरियों की कयामत करो। आज नहीं, कहीं और की मुरली, 1970 दिसंबर 1970 की मुरली है। 10 बज गए तो पूरा करें। बाप माना बाप, ये भी था ना उस दिन, बाप माना बाप, इसका अर्थ चिमन भाई,
बाप माना बाप,
बस कुछ पूछो ही मत आगे, बाप है बस, एक ही निश्चय है, कुछ वो दूसरा कुछ है उसके आगे कुछ है ही नहीं, सारा आ गया। स्वयं का पुरुषार्थ का चार्ट स्वयं
बनाएंगे,
संगठन का बनाया हुआ हमको अप्लाई हमेशा होगा, जरूरी नहीं, हर एक की दिनचर्या अलग है,
अलग अलग
अपना चार्ट, अपनी कमजोरियां, अपने कर्म भोग, अपने हिसाब किताब, अपना प्रारब्ध, अपना पुरुषार्थ, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, अपनी खूबियां, अपनी खामियां, स्व आत्मा की अपनी अपनी, इसके लिए स्वयं का चार्ट स्वयं बनाओ, स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं करो, संगठन की मदद लेनी है पर उठाना स्वयं को स्वयं है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट योग करते फिर चलते।